ठीक है, अब कोई बात नहीं, थोड़ा एक पढ़ पढ़ने में दिक्कत आती है, फिर थोड़ा दूर रखिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवानि वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। अष्टानिका महापर्व के स्वाध्याय के क्रम में सायंकालीन स्वाध्याय में हम लोग श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांकों पर उनके जो पद हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो पदों पर हमारी चर्चा हो गई थी और ये तीसरा पद है जिस पर हमने कल अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। बहुत सुंदर पद है और इसमें हमने पंच परम पंथ परम पद बोध्यो जेने प्रमाणे परम वीतरागे जे प्रमाणे परम वीतरागे ते अनुसारी कईशु प्रणमी ते प्रभु भक्ति रागे। मूल परम पद कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चरण पूर्ण प्रणमे एक स्वभावे शुद्ध समाधि त्या परिपूर्ण। ये दो पदों पर अपनी चर्चा हो गई थी, इस पर भी अपनी चर्चा कल हुई थी थोड़ी। जे चेतन जड़ भावो अवलोक्याछे मुनिन्द्र सर्वज्ञ तेवी अंतर आस्था। अभी बहुत अच्छी बात बहिंश्री की तत्व चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा अभी आई थी सर्वज्ञ स्वभाव की स्थापना आई थी ना बात, बहुत मार्मिक बात थी कि सर्वज्ञ को देखकर अपने सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि हो कि मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूं और सर्वज्ञ होने की योग्यता सर्वज्ञ होने की लायकात अथवा मैं पुरुषार्थ से सर्वज्ञ पद प्राप्त कर सकता हूं, है ना। ऐसा जिसको अंतर्बोध हो जाए, ऐसी जिसकी अंतर परिणति हो जाए, उसे अपने में उसे स्वयं सर्वज्ञ होने की शंका नहीं होती अपनी। पूज्य गुरुदेव श्री मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा के समय सोनगढ़ में जब मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा हुई थी और उस प्रतिष्ठा के समय गुरुदेव श्री का एक महामंगलमय प्रवचन हुआ था, पंच कल्याणक प्रवचन पुस्तक में वह प्रवचन प्रकाशित है और उसमें बहुत मार्मिक बात गुरुदेव श्री ने कही थी। सर्वज्ञ का निर्णय करने वाले को भव की शंका नहीं होती कि अभी मेरे और भव होंगे तो कि सर्वज्ञ की निर्णय करने वाले को भव की शंका नहीं है, और जिसे भव की शंका है ठीक है उसे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है। देखो कुल परंपरा से निर्णय अलग बात है, कुल परंपरा से अपन मानते हैं कि हम भगवान सर्वज्ञ परमात्मा को मानते हैं, और सर्वज्ञ परमात्मा उसे कहते हैं जो तीन काल तीन लोक को जाने, है ना। ये परलक्षी बातें तो बहुत बार यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन जो सर्वज्ञता उनको प्रकट हुई तो सर्वज्ञता का निर्णय करते ही हमको उस सर्वज्ञता के बीज पर हमारी नज़र जानी चाहिए। जैसे अपन आम का पेड़ देखते हैं तो अपने को ये शंका होती है कभी कि इसमें अगर किसी ने नीम का बीज बोया होगा तो, होती कभी शंका? क्यों नहीं होती? क्योंकि फल सर्वज्ञ का, मतलब आम का फल आया है, आम का फल उगा है, वो इस बात को बताता है कि इसमें बीज भी आम का है, ठीक है। ये सर्वज्ञ ये फल है और सर्वज्ञ स्वभाव उस फल का बीज है। तो ये कैसी श्रद्धा कि हम सर्वज्ञ को तो माने और सर्वज्ञ स्वभाव को ना माने। तो आचार्य कहते हैं तुमने सर्वज्ञ को भी नहीं माना। अच्छा अब एक बात बताओ कि जिसने सर्वज्ञ स्वभाव को स्वीकार किया उसको सर्वज्ञ होने की, भव का अभाव होने की निशंकता आती है कि नहीं आती है? और अगर नहीं आती है तो फिर सर्वज्ञ को माना है ये बात कैसी कही जाए, है ना। तो ये यहां पर आया, तेवी अंतर आस्था प्रगटे दर्शन कयू छे तत्वज्ञ, है ना। ऐसी अंतर आस्था प्रगटे के जड़ भावो अवलोक्याचे मुनिंद्र सर्वज्ञ, कि जड़ जड़ और चेतन भावों को मुनिंद्र सर्वज्ञ परमात्मा ने अवलोकन किया है, उन्होंने देखा है, जाना है, दिव्य ध्वनि में कहा है, ठीक है। और तेवी आस्था, तो जिसने, तो ये जो जो आस्था आती है ये किसके बल पर आती है? सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है तो हमको सर्वज्ञ की आस्था होगी, तो सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वभाव की आस्था होगी। लेकिन सर्वज्ञ की आस्था कब होगी? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, और वो तब होगी जैसा अभी कहा था ना चर्चा में, हाँ कि वो तो भाई सर्वज्ञ स्वभाव, इसमें से सर्वज्ञपना आया और ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हो गया तो कहते हो गया सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होने पर भव की शंका रहे कि ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पहला गुण ही निशंकित गुण है, शंका होती नहीं उसको भव की। मेरे अनंत भव बाकी होंगे तो अभी तेरे को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, तेवी अंतर श्रद्धा प्रगटे, प्रगटे मतलब प्रकट होने पर दर्शन कयू छे तत्वज्ञ। अब फिर क्या कहा, सम्यक प्रमाण पूर्वक ते भावो ज्ञान विषय भासे, सम्यक ज्ञान कयू ते संशय विभ्रम मोह त्यान नाशे। क्या होता है कि देखो जब सम्यक दर्शन होता है, गजब की बात है कि जब सम्यक दर्शन जिस काल में होता है वो किस काल में होता है भैया? आत्मा की अनुभूति के काल में। किस काल में होता है? शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन का जन्म होता है, जन्म के काल की बात है, जन्म शुद्धोपयोग में होगा, बाद में शुद्धोपयोग के बिना भी सम्यक दर्शन टिका रहेगा, लेकिन उसका जो उत्पत्ति होगी वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होगी, हाँ तो वो शुद्धोपयोग के काल में होगी। और गजब की बात क्या कि जिस समय शुद्धोपयोग हुआ ना और जहां सम्यक दर्शन हुआ तो उसी काल में ज्ञान प्रमाण ज्ञान हो गया, यानी सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान है। उस प्रमाण ज्ञान में त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का ज्ञान भी होता है, उस प्रमाण ज्ञान में प्रकट शुद्धता का ज्ञान भी होता है, उस प्रमाण ज्ञान में वर्तमान अशुद्धता का भी ज्ञान होता है, उस प्रमाण ज्ञान में निमित्त का भी ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानना, तो ज्ञान सबको जानेगा। श्रद्धा एक की और ज्ञान अनेक का, द्रव्य को भी जानेगा, गुण को भी जानेगा, पर्याय को भी जानेगा, वो सब जानेगा। तो कैसा हुआ, सम्यक प्रमाण पूर्वक ते भावो ज्ञान विषय भाषे, सब भाषित होता है एक की श्रद्धा। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है, अभी अपन ने चर्चा करी ना कि शुद्धोपयोग के काल में सम्यक दर्शन का जन्म होता है, उसी काल में भाव शुद्ध ज्ञान यानी प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। अरे सच यह है कि उसी काल में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। द्रव्य संग्रह की 47 नंबर की गाथा गुरुदेव श्री के प्रवचनों में कई बार सुनी होगी, दुयम्पी मोक्ष हेऊ, वो वाली गाथा है ना, कि वो शुद्धोपयोग के काल में सारा कमाल होता है। तो अपने को एक प्रश्न खड़ा होता है यहां पर, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि अभी अपन यहां पर चर्चा करी कि सम्यक प्रमाण का जन्म होता है, निश्चय व्यवहार का जन्म होता है, मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, ये सब बोला ना। और 9वें नंबर के कलश में समय सार में आचार्य भगवान ने क्या कहा, उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम नहीं जानते। माना ये समझो कि अनुभूति से तुरंत आकर के जैसे ये बात कही हो, उदयति नय श्री न उदय, माने नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, यहां कह रहे हैं, एक और कह रहे हैं कि अनुभूति के काल में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, एक और कह रहे हैं कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। सुनना ध्यान से, अभी संधि करेंगे अपन। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उधर कलश में कह रहे हैं प्रमाण अस्त हो जाता है, इधर कह रहे हैं प्रमाण का जन्म होता है। ठीक है, निक्षेप की चर्चा इसमें नहीं आई है, लेकिन वहां चर्चा आई निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम नहीं जानते, अधिक क्या कहें, द्वैत ही भाषित नहीं होता। तो वहां पर यह कहा और यहां पर ऐसा कहा, तो क्या है इसकी विवक्षा, समझना तो पड़ेगा ना, नहीं तो अपन यहां ये पढ़ के जावे फिर 9वां कलश पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि यार इनने सही कहा कि उनने सही कहा, कि दोनों ज्ञानियों की वचन है, अपेक्षा भेद है। वहां जो नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, माने विकल्पात्मक नयो अस्त हो जाते हैं, विकल्पात्मक प्रमाण नहीं रहता, निक्षेप नहीं रहता, लेकिन निर्विकल्प प्रमाण का जन्म वहां होता है ना। और उसी निर्विकल्प प्रमाण के भेद निश्चय व्यवहार, ये जो दो भाग पड़ते हैं, ये दो भाग शुद्धोपयोग के काल में पड़ते हैं, जब प्रथम शुद्धोपयोग होता है तो दो भाग पड़ते हैं, उसमें जितना शुद्धि अंश वो निश्चय कहलाता है और जितना अशुद्धि अंश उसको व्यवहार कहते हैं, शुभ भाव रूप, अशुभ भाव की बात नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये अपेक्षा पे मैंने विकल्पात्मक प्रमाण और विकल्पात्मक नये वहां पर नहीं होते, मैंने नयों का विकल्प नहीं होता, दूसरी भाषा में कहें तो नयों संबंधी विकल्प नहीं होता, प्रमाण संबंधी विकल्प नहीं होता, निक्षेप संबंधी विकल्प नहीं होता, एक ध्रुव त्रिकाली चैतन्य का आश्रय करके पर्याय का वेदन होता है, ध्रुव का वेदन नहीं होता। सुनना ध्यान से, वचनामृत में 372 नंबर का बोले, पर्याय का वेदन है, अवलंबन नहीं, ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं। क्या मतलब, कि जिसका अवलंबन उसका वेदन नहीं, और जिसका वेदन उसका अवलंबन नहीं, माना फिर अब बोला तो जाता है आत्मा का अनुभव, ध्रुव का अनुभव कि बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो पर्याय ध्रुव स्वभाव के सन्मुख हुई, सारे जगत से विमुख होकर के ध्रुव स्वभाव के सन्मुख हुई, इतना बताने के लिए ये कथन है। सच्चाई तो यह है कि ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं है, वेदन पर्याय का होता है, क्यों, क्योंकि अगर एक वेदन तो एक समय का है ना, एक एक समय का है। अब एक समय के वेदन को ध्रुव में अभेद कर दो तो अगले समय ध्रुव का नाश हो जाएगा, सुबह भी बात आई थी। तो यहां पर देखो कहा तेवी या सम्यक प्रमाण पूर्वक ते भावो ज्ञान विषय भाषे सम्यक ज्ञान कयु छे कयु ते, उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है और उस सम्यक ज्ञान में कोई भाव बाकी नहीं बचता। देखो तो श्रद्धा का विषय एकमात्र त्रिकाली ध्रुव, श्रद्धा की दुनिया में सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं। सम्यक दर्शन का विषय तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव है ना। देखो उसमें माने मुख्य गौण की व्यवस्था भी श्रद्धा में नहीं है। श्रद्धा केवल मैं करना जानती है और ज्ञान श्रद्धा के विषय को भी जानता है और श्रद्धा का विषय क्या नहीं है तो वह गुण पर्यायों को भी जानेगा, संयोग को भी जानेगा, प्रकट शुद्धता को भी जानेगा, प्रकट अशुद्धता को भी जानेगा, निमित्त को भी जानेगा, वो सब ज्ञान में जानने में आवेगा। ज्ञान में ये सब जानने में नहीं आवे तो ज्ञान झूठा, और श्रद्धा में इन सबको मिला करके श्रद्धा करना चाहो तो श्रद्धा झूठी, श्रद्धा मिथ्या आ गया। तो इसलिए यहां पे कहा सम्यक ज्ञान कयु ते, और फिर वो ज्ञान होता कैसा है, संशय विभ्रम मोह त्या नाश्यो। ज्ञान के तीन दोष होते हैं, एक ज्ञान में संशय नाम का दोष होता है, मिथ्या ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में नहीं। मिथ्या ज्ञान क्यों है, वो संशय है, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, निर्णय नहीं कर पा रहा कुछ भी, शंका में डामाडोल दौलता है, आत्मा द्रव्य स्वभाव है ना, और पर्याय तो मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं मैं राग हूं, क्या हूं मैं, है ना, एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है और संशय में डोल रहा है। विभ्रम, इसको विप्रय भी बोलते हैं, कि जैसा स्वरूप है उससे उल्टा जानना, जैसे मैं शरीर ही हूं, मैं राग ही हूं, और मोह माने इसको, मोह माने इसको दूसरी भाषा में कहें तो बोलेंगे अनद्यवसाय, संशय विपर्य और अनद्यवसाय, उसको विमोह भी बोलते हैं और अनद्यवसाय भी बोलते हैं। अनद्यवसाय, अरे होगा ना, क्या माथा मारना है इसमें, होगा जो भी होगा होगा, क्या करना अपने को, अपने को तो ठीक है अष्टानी का पर्व तो सुन लिया, चलो चलो अभी क्या लेना देना बाद में है, अनद्यवसाय में जी रहे हैं अपन लोग, कुछ होगा है ना। अभी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था, छह महीने पुरुषार्थ वाला, छह महीने में अगर नहीं होवे तो एक कितना गजब का स्पष्टीकरण है कि भाई छह महीने कोई धारावाहिक एक जैसा पुरुषार्थ नहीं रहता, पुरुषार्थ की मंदता तीव्रता तो होती रहती है लेकिन धारा नहीं टूटती, धारा बराबर बनी रहे, मंदता तीव्रता नहीं, मंदता तीव्रता तो आएगी धारा नहीं टूटेगी, ठीक है। और छह महीने में नहीं हुआ तो, कि नहीं हुआ तो पूछा था ना, उभयाभाषी एक निश्चयाभाषी एक व्यवहाराभाषी है, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था, बार बार सुनने जैसी चर्चा थी आज की है। तो अपन लोगों के क्या है कि या तो हम संशय में जीते हैं या विपरीतता में जीते हैं, और या होगा ना क्या करना अपने को, कितना माथा मारेंगे ये छोड़ो, ठीक है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा, उकताहट आ जाती है, अरे छोड़ो होगा जो होगा, आत्मा हूं तो ठीक है, शरीर हूं तो ठीक है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, निर्णय तो कुछ होता नहीं, ठीक है। इस तरह अन्य व्यवसाय, तो ये क्या हुआ कि ज्ञान के ये तीन दोष सम्यक ज्ञान होने पर त्यान नाश्यो, माने इनका अभाव होता है, अर्थात सम्यक ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सम्यक बोध होता है, उस वस्तु के स्वरूप में रंच मात्र भी शंका नहीं होती, वस्तु के स्वरूप में विपरीतता नहीं होती, और वस्तु के स्वरूप के प्रति निरुत्साह या अनद्यवसाय का भाव नहीं आता। तो पहली चर्चा आएगी कि आस्था का नाम सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान की चर्चा की, देखो एक पद में कितना भर दिया है ना। अपन लोग वास्तव में एक एक पद को भी अगर अपन पढ़ें तो अपने लेकिन बहुत गंभीरता से, ऐसे नहीं खाली पद पढ़ लिया अपन ने, बस राग में लय में हमने पढ़ लिया और काम हो गया हमारा। एक एक पद को विचार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत भरा हुआ है इनके पदों में भी, ठीक है। सम्यक ज्ञान तो ये हो गया। अब देखो, अब सम्यक ज्ञान होने के बाद तीसरा नंबर किसका आता है कि चारित्र। और चारित्रधारी का एक स्वरूप वीतरागी संत, चारित्र चारित्र के मुख्य आराधक, गौण आराधना श्रावक और सम्यक दृष्टि को भी होती है, लेकिन चारित्र के मुख्य आराधक कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। तो मुनिराज का स्वरूप बताते हुए रत्नकरंड श्रावकाचार में जो गाथा लिखी उस गाथा का अनुवाद इसमें कर दिया। कौन सी गाथा है? विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। क्या कहा? विषयासा, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, है ना। विषयासा वसातीतो, विषयों की आशा का वशवर्ती पना, उससे जो अतीत हो गए हैं, अर्थात विषयों की जिनको निवृत्ति हो गई है। विषयासा, विषयों की आशा से वशपना, वशातीतो, उसके वश से अतीत हो गए, माने विषयों के अधीन जो नहीं है, अब विषयों के जो गुलाम नहीं है, जिन्होंने विषयों की गुलामी तोड़ दी है। और फिर क्या लिखा? निरारंभौ परिग्रह, माने निरारंभौ परिग्रह मतलब जो आरंभ से रहित होते हैं और परिग्रह से रहित होते हैं। तो फिर ये सब रहित ही होते हैं तो कुछ करते भी है कि नहीं? क्यों, अपने को तो कुछ करने धरने वाले चाहिए, ये नहीं करने वाले अपने को नहीं चाहिए। तो आचार्य भगवान ने कहा करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपौ रक्त, ज्ञान में, ध्यान में और तप में क्या करते हैं? रक्त, मन उसमें तल्लीन रहते हैं। ते ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, वे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार की परिभाषा है, और ये श्रावकाचार का ग्रंथ है तो मुनियों के लिए तो लिखा नहीं होगा, श्रावकों का ही लिखा है, ठीक है। उसमें भी उन्होंने ये लिखा, क्यों? क्योंकि अगर हमको समय दर्शन का निर्णय नहीं होगा तो श्रावक पना आएगा कहां से? समय दर्शन के बिना श्रावक पना नहीं आता, और समय दर्शन के बिना मुनि पना नहीं आता। श्रावक का वेश धारण कर सकते हैं, मुनि का वेश धारण कर सकते हैं, लेकिन मुनि पना और श्रावक पना नहीं आएगा। और जब श्रावक की बात चलती थी तभी गुरुदेव बोलते थे आप बाड़ा ना श्रावक तो श्रावक न थी, ये तो सावज छे। ये गुरुदेव के पेटेंट वाक्य हैं ये, जब भी श्रावक की बात चले ना तो वही सीधा बोल रहे आ बाड़ा ना श्रावक तो श्रावक न थी। क्यों? मतलब कि सम्यक दर्शन के बिना, इसलिए प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन का प्रयत्न करना, और सम्यक दर्शन के प्रयत्न के लिए भगवान पंच परमेष्टि, भगवान अर्यंत परमात्मा, भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया, जो आत्मा का स्वरूप बताया, उसकी अंतर अनुभूति पूर्वक प्रतीति आना। फिर तीसरे नंबर में लिया विषयारंभ निवृत्ति राग द्वेष नो अभाव जहां थाय। क्या? विषयारंभ निवृत्ति, विषय और आरंभ से निवृत्ति, जैसा भी कहा ना विषयासा वसातीतो, उसी शब्द को कहा विषयारंभ। उन्होंने दोनों पदों को एक साथ ले लिया, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह, तो उन एक लाइन का पूरा अर्थ कर दिया विषयारंभ निवृत्ति। ये चारित्र का पहला चरण नास्ति की ओर से। फिर दूसरा राग द्वेष नो अभाव ज्ञा थाय, कि जहां राग और द्वेष का अभाव होता है, कि जहां राग द्वेष का अभाव हो गया तो वीतराग हो गया, फिर तो कहे ना संजलन संबंधी राग बाकी है केवल, तीन कसाय चौकड़ी का राग जहां पर मिट गया। और संजलन संबंधी राग में भी क्या, कि जब इस संजलन का मंद उदय हो, तो स्वरूप की अनुभूति रूप सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं। और जब संजलन का तीव्र उदय आवे तो सातवें गुण स्थान से गुण स्थान छठा आ जाता है, और छठे गुण स्थान में भी जो राग द्वेष होते हैं वो इतने मर्यादित तो होते हैं कि कहने मात्र को हम राग द्वेष उनको कह सकते हैं, लेकिन सच में उन राग द्वेष में कोई दम नहीं है। जैसे कोई आदमी है ना, अभी कोविड के टाइम पे तो बहुत हुआ था कि जब लगे कि भाई अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर अंतिम प्रयास क्या होता था कि वेंटिलेटर पे डालो। ठीक है वेंटिलेटर पे डालो। वो तो देखो उनका विज्ञान है, अपने यहाँ तो जितने आयु के निषेक हैं, अंतिम निषेक जब तक नहीं खिरेगा देह नहीं छूटेगी। ठीक है, तो वेंटिलेटर पे डालने का मतलब, जिसको वेंटिलेटर पे डाल दिया मतलब क्या कि डॉक्टर ने भी समझ लिया कि ये गया, और घर वाले भी इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अब ये जाने वाला है। ठीक है, तो मुनिराज के जो राग द्वेष है ना, मुनिराज के जो राग द्वेष अपने को दिखते हैं थोड़े बहुत संजलन संबंधी, कि वे कैसे राग द्वेष हैं, कि वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए राग द्वेष हैं। अंतिम सांसें गिनते हुए राग द्वेष हैं, अभाव की ओर जाते हुए राग द्वेष हैं, मिटने के लिए तत्पर राग द्वेष हैं, है ना। और उनके राग की मर्यादा कितनी होती है, कितना मर्यादित राग होता है, अमर्यादित राग होता नहीं। क्यों भाई? क्योंकि स्वरूप की अनुभूति की जागृति, स्वरूपानुभूति इतनी बढ़ गई है कि विषयों की आशा नहीं होती, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। और राग द्वेष का मुख्य कारण वो तो विषय अथवा आरंभ और परिग्रह है, वो तो छूट गया हमको, है नहीं। तो थोड़े बहुत राग द्वेष, हल्के फुल्के राग द्वेष होते हैं, उसके लिए सुदृष्टि तरंगिणी में इन चार कसायों का जो माप निकाला, अनंतानुबंधी कसाय कैसी है, तो उन्होंने कहा पत्थर पर टांकी से खींची हुई लकीर के समान अमिट है। ठीक है, और संजलन संबंधी राग द्वेष कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बहता हुआ पानी और उसमें हाथ से आप लकीर खींचो, खींचेगी क्या होगा कि इधर तुम खींचते जाओ उधर वो धुलती जाएगी, है ना। और इसीलिए तो भाई साहब हर अंतर मुहूर्त में उत्कृष्ट लो तो पौन सेकंड छठा गुण स्थान और उससे आधा सातवां गुण स्थान, और अधिक से अधिक लो तो अंतर मुहूर्त के पहले पहले सातवां गुण स्थान आ जाता है, उनको निर्विकल्प अनुभूति आ जाती है। भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धातम में रमते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। क्यों सिद्धों से बातें करने का मतलब क्या, कि सिद्ध भगवान जो अतिंद्रिय आनंद चख रहे हैं, मुनिराज भी उसी अतिंद्रिय आनंद को चख रहे हैं। और प्रचुर स्व संवेदन, बहन श्री के वचनामत में बोल आता है प्रचुर स्व संवेदन, वह मुनिराज का भावलिंग है। वे मुनिराज क्या कहते हैं कि तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की शुद्ध परिणति रूप पतली धारा से हमें संतोष नहीं है। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया उसको भी वह कहते हैं पतली धारा है ये, तो क्या चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। सादी अनंत का आनंद लइए पतली धारण भावे मन में, बोलते कि नहीं बोलते भजन के अंदर, हाँ सादी अनंत का आनंद चाहिए हमें, पतली धारा से हमें संतोष नहीं होता। उनको प्रचुर स्व संवेदन वर्तता है, उसको वे मुनिराज पतली धारा कहते हैं। और यहां तो अभी नल सूखा ही पड़ा है अपना, तो धारा चालू ही नहीं हुई अतिंद्रिय आनंद की, और फिर भी खर्राटे से सोते। कभी नींद उड़ी इस बारे में, आत्मा की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हुई? अगर भाई साहब जेब में से कोई लुटेरा 1,000-2,000 रुपए के नोट निकाल करके ले जावे, रस्ते में जेब कट जाए, 2,000 का पर्स में 2,000 रुपया हो और वो गुम जाए, तो उसका जितना खेद होता है, उसका जितने देर विचार चलता है, आत्मा की अनुपलब्धि के संबंध में, कि आज तक मुझे आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई, क्या कभी हमको थोड़ी बेचैनी हुई है क्या? मन अब इधर तुलना करो तो इधर क्या तुलना है, तो देखो कितना बढ़िया लिखा, विषयारंभ निवृत्ति राग द्वेषनो अभाव ज्ञाताय, बराबर। फिर क्या लिखा, लेकिन कैसे, कि सहित सम्यक दर्शन, कि तुम ये हमने इतनी बात की चारित्र की, इतनी बात की, तो उस सम्यक दर्शन को भूल मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। ये सुख लेशन पायो, ये भी थोड़ा मीठी भाषा का वचन है। इसको अगर असली भाषा में कहें, क्या पाया, ये तो क्या नहीं पाया ये कहा है, अब क्या पाया अगर इसको कहें तो कहें क्या, क्या बोलेंगे, पे निज आत्म ज्ञान बिना बहु दुख ही दुख पायो, है ना। गुरुदेव श्री कहते थे कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वो भाव धर्म नहीं है, धर्म नहीं है ये मीठी भाषा में, और कड़क भाषा में कहें तो क्या है, तो कहते अधर्म है। तो लोग क्या कहते थे पता है, लोग क्या कहते थे, लोग ये कहते थे साहब आप इसको पुण्य कह दो हमें स्वीकार, आप धर्म नहीं है ये कह दो हमें स्वीकार है, लेकिन प्रभु अधर्म मत कहो। क्यों? क्योंकि आप अधर्म कहते हो तो हमें चोट पड़ती है, हा? अरे एक बार अधर्म सुन करके चोट लग जाए और राग रहित स्वभाव की दृष्टि हो जाए, यही तो ज्ञानी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो मीठी भाषा में सुनना है, धर्म धर्म नहीं है ये कह दो, पुण्य है ये कह दो, धर्म नहीं है ये कह दो, अधर्म नहीं कहना। सुख आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं पायो ये कह दो, तो ये तो बताओ जब सुख नहीं पाया तो क्या पाया, कि दुख ही दुख पायो। नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो अंदर में चोट लगती है। तो आचार्य भगवान यहां पर श्रीमद जी ने कहा, क्या कहा, कि ये सब कैसे, विषयारंभ निवृत्ति राग द्वेषनो जहां अभाव थाय सहित सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना राग द्वेष का अभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राग द्वेष का पावर हाउस मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व राग द्वेष का पावर हाउस है। तो मिथ्यात्व जब तक है कसाय को पावर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मान लो अपने को कि साहब अभी को सारी लाइट बंद करनी है, तो क्या करें कि बंबई के एक एक घर में जाके मेन स्विच बंद करें, ठीक है ना, कितने दिन लगेंगे। और गवर्नमेंट कहती 3 घंटे के अंदर लाइट बंद रहनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन के विमान आ रहे हैं, 3 घंटे के अंदर ब्लैक आउट। तो क्या करना, अभी एक एक घर में जाएं और एक एक घर का मेन स्विच बंद करें, तो जितने में तो डाल जाएगा कोई। तो क्या करना, क्या करते हैं कि पावर हाउस से ही कनेक्शन कट करते हैं। जब पावर हाउस से कनेक्शन कट किया तो क्या हुआ, लाइट का अभाव हो गया, पंखे चल रहे थे, चलते हुए दिखते तो हैं लेकिन वो रुकने लगे। मिथ्यात्व है वो कसाई का पावर हाउस है, कसाई को पावर मिलती है, कसाई को ताकत मिलती है। मिथ्यात्व इस बात की गारंटी देता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, पहले नंबर मेरा आएगा बाद में तुम्हारा आएगा। इसलिए हर जगह अपने यहां पर सहित सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सहित की शर्त अपने यहां पे हर जगह रखिए। रत्नगण श्राव कुछ चार पढ़ लो, चाहे आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लो, यानी कितने ही श्राव का आचार के ग्रंथ पढ़ लो और चाहे मुनियों के आचार के ग्रंथ पढ़ लो, सब में सम्यक दर्शन की अनिवार्यता का पहले प्रतिपादन किया। और फिर जो पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना, सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन किया। फिर पंडित जी साहब ने लिखा सम्यक ज्ञानी, मैंने सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक ज्ञानी हो गए, कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश और सकल देश तसुभेद कहिजे। और ये किसका पद्यानुवाद है पता है आपको? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा का पद्यानुवाद है ये। इस प्रकार सम्यक ज्ञान की आराधना करके, माने सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की आराधना करके अब सम्यक चारित्र को अंगीकार करना। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना वो होता नहीं, हमारे मानने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो यहां पे लिखा सम्यक सहित सम्यक दर्शन शुद्ध चरण। अब देखो क्या क्या शब्द का प्रयोग किया, सहित सम्यक दर्शन, ऊपर ऊपर की बात आई कि सहित सम्यक दर्शन, और फिर सम्यक दर्शन सहित क्या, कि केवल विकल्पात्मक व्यवहार चरित्र की बात नहीं, शुद्ध चरण। शुद्ध चरण माने शुद्ध भाव, वीतरागी शुद्ध भाव, राग है। कल कहा था, परसों कहा था, या जो भी कहा था ध्यान से सुना होगा आपने, ये कहा था कि कोई भी राग भूमिका के अनुसार भले ही होता हो, वर्तमान भूमिका में दोष रूप है और अगली भूमिका के लिए घातक है। ये चर्चा आई थी अपनी, आई थी ना, कहेगा शुद्ध चरण। फिर क्या है? शुद्ध चरण त्या समाधि सदुपाय। जहां ऐसा शुद्ध चरण, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जहां ऐसा शुद्ध चरण हो गया, यही समाधि का सदुपाय, माने एकमात्र सदुपाय है, इसके अलावा समाधि का कोई उपाय नहीं। समाधि माने रत्नत्रय की विशिष्ट आराधना। तो रत्नत्रय होगा तभी तो रत्नत्रय की आराधना करेगा, रत्नत्रय है ही नहीं तो काय की आराधना करे। रत्नत्रय की उग्रता, रत्नत्रय हो तब तो रत्नत्रय की ओर दृढ़ता करे, रत्नत्रय तो होना चाहिए पहले, ठीक है। तो ये कहा सदुपाय। फिर क्या कहा? त्रणे अभिन्न स्वभावे, कि तीन अलग अलग तीन मोक्ष के मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन एक मोक्ष का मार्ग, सम्यक ज्ञान एक मोक्ष का मार्ग, और सम्यक चरित एक मोक्ष का मार्ग। अगर तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग होते तो फिर क्या होता? कि सिद्धालय में भी तीन पार्टियां होती, नहीं होती। ये तो सम्यक दर्शन करके ही मोक्ष में आ गए, हम तो चारित्र करके आए। ये सम्यक ज्ञान वाले मोक्षी मोक्ष वाले हैं, ये सम्यक चारित्र वाले मोक्ष वाले हैं, ऐसा नहीं होता भाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों, फिर क्या लिखा? त्रणे अभिन्न स्वभावे, बराबर परिणमी आत्मस्वरूप ज्ञा थाय। कि अभिन्न स्वभाव कहां परिणमेंगे? अभिन्न स्वभाव वे तब परिणम सकते हैं जब उन तीनों का आश्रयभूत तत्व एक हो, है ना। अब सम्यक दर्शन का आश्रयभूत तत्व देहशास्त्र गुरु हो, सम्यक ज्ञान का आश्रयभूत तत्व शास्त्र हो, और सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या हो? अनुव्रत महाव्रत आदि की क्रिया हो, तो फिर तीनों अभिन्न कहां हुए? एक जाएगा देवगुरु के पास, एक जाएगा शास्त्र के पास, एक जाएगा शरीर की क्रियाओं के पास, अभिन्न कहां हुए? अलग अलग हो गए, तो अलग अलग दौड़ हुई। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। सम्यक दर्शन आत्मा की श्रद्धा, सम्यक ज्ञान आत्मा को जानना, सम्यक चरित्र आत्मा में परिणति। यानी कहने का मतलब क्या? इन सभी निर्मल परिणतियों का आश्रय भूत, इनका अवलंबन भूत, अवलंबन का तरीका अलग हो सकता है। श्रद्धा प्रतीति रूप में अवलंबन करती है, ज्ञान जानने रूप में अवलंबन करता है, चारित्र स्थिरता रूप में अवलंबन करता है। अवलंबन की प्रकृतियों में अंतर होने पर भी इन सभी परिणतियों का उपास्य देवता एकमात्र चैतन्य चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियां होती है, होती है ना, तो 96,000 चक्रवर्तियों की पत्नियां, मैंने चक्रवर्ती के 96,000 होती है, लेकिन 96,000 का एक होता है, उनका एक सौभाग्य, उनका एक पति, वो कौन? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की 96,000 हो, लेकिन 96,000 का एक है, ठीक है। इसी प्रकार निर्मल परिणतियां अनेक प्रकार की हो सकती है, श्रद्धा की परिणति, ज्ञान की परिणति, चरित्र की परिणति, सुख की परिणति, वीर की परिणति, आनंद की परिणति, अनेक गुणों की अनेक परिणतियां, परिणतियां अनेक हो सकती है, लेकिन इन परिणतियों का उपास्य देवता एकमात्र चैतन्य चक्रवर्ती है, तभी इनको अवेद भावे या अभिन्न स्वभावे परिणमी आत्मस्वरूप ज्ञा थाय। और सभी परिणतियां उस आत्म स्वभाव की विभिन्न विशेषताओं को अपनी पर्याय में प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि पर्याय का दूसरा नाम है अन्वय का विशेषण। अन्वय का विशेषण गुण का नाम है, और अन्वय का व्यतिरेक माने जो अन्वय द्रव्य है उस द्रव्य की जितनी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को कहते हैं गुण, और पर्याय में उन गुणों की अभिव्यक्ति के एक गुण का कैसा स्वरूप है, ज्ञान गुण का प्रकटपना जानने रूप होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान जानने से बना है, उसका स्वभाव जानना है। श्रद्धा गुण का परिणमन प्रतीति भाव रूप से होगा, चारित्र गुण का परिणमन लीनता भाव रूप से होगा, सुख गुण का परिणमन सुख रूप से होगा, आनंद गुण का परिणमन आनंद रूप से होगा। ऐसे एक एक पे लगाना, अनेक होने पर भी, अनेक प्रकार की होने पर भी एक आत्मा के, एक आत्मा की विविधताओं को प्रकाशित करती है। और विविधताओं को प्रकाशित करने में भी कैसी, कि विविधताओं में भी एक रूपता, और एक रूप होने पर भी विविधता, ऐसा है वो अनुभूति का स्वर। अनेक 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 गुणों का एक रस अनुभव में आता है, लेकिन अनेक का भेद नहीं होता। अनेक का स्वाद आता है, लेकिन अनेक का विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब अनेक का विकल्प होता है तो अनुभूति छूट जाती है, अनुभूति छूट जाएगी। अनेक के विकल्प में अनुभूति से नीचे आ जाते हैं, सातवें से छठे में आ जाते हैं, और चौथे पांचवें वाले ज्ञानी शुद्धोपयोग से गिर करके शुभोपयोग में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आस्वादन करना यह शुद्धोपयोग है, और आस्वादन का विकल्प यह शुभोपयोग है। आप बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ आ रही है? आस्वादन शुद्धोपयोग, और क्या आस्वादन किया कि यह विकल्प, कि इस विकल्प के काल में आस्वादन नहीं और आस्वादन के काल में विकल्प नहीं। बोलो, हलवा खा रहे हो बहुत तबीयत से, अब उसमें पूछा क्यों जी कैसा बना, तो उसको उत्तर देने के टाइम पर आपको हलवे का स्वाद नहीं आएगा, और जिस समय हलवा का स्वाद ले रहे हो उस समय फिर स्वाद ही होता है, विकल्प नहीं होता। विकल्प में स्वाद नहीं और स्वाद में विकल्प नहीं। उदाहरण देता हूं मैं कई बार इसके लिए, मैंने कहा एक दामाद और कंजूस सेठ, सेठानी दरिया दिल, सेठ कंजूस, और दामाद पहली बार आया। अब पहली बार आया तो सेठानी ने फर्स्ट क्लास मूंग का हलवा, उसमें तैरता हुआ घी, उसमें खूब प्रकार के ड्राई फ्रूट, केसर, ये सब। अब दोनों को बैठाया खाने के लिए, तो खाने के लिए जब दोनों को बैठाया, दामाद जी तो मजे ले रहे, क्यों? क्यों कोई विकल्प ही नहीं उनको। और सेठ जी सोच रही सेठानी बर्बाद करके रहेगी, अरे इतना इतना घी डालने की क्या जरूरत थी इसमें, इतना इतना ड्राई फ्रूट डालने की क्या जरूरत थी, पता नहीं कितनी महंगाई हो रही है, एक हलवा की प्लेट कितने रुपए की पड़ी होगी, वो अपनी बनियागिरी लगाने लगा वहां। और दामाद कह रहा पिताजी खाइए खाइए बहुत अच्छा बना है। अब खावे क्या पिताजी, उसको तो विकल्प के मारे चैन नहीं। तो हलवा दोनों खा रहे, खाते हुए दोनों दिख रहे हैं, स्वाद किसको आ रहा है? बोलो स्वाद किसको आ रहा है? दामाद को, जिसको कोई विकल्प नहीं है कितने की पड़ी है। ठीक है, इसी तरह अनुभूति का विकल्प, क्या क्या अनुभव में आया, ऐसा विकल्प आया शुभोपयोग में आ गए, और ये विकल्प नहीं तो वहां पर क्या है, निर्विकल्प आत्मस्वरूप ज्ञा थाय। आत्मस्वरूप हो गया वो, तो हर गुण की आवाज, हर गुण की धड़कन, अनंत गुणों के परिणमन की धड़कन, वो क्या बोलती है, अपना परिचय आत्मा के रूप में देती है। ज्ञान की परिणति उससे पूछो तमे कौन,
आत्मा, श्रद्धा की परिणति तमे कौन आत्मा, चारित्र की परिणति तमे कौन आत्मा, जितनी जितनी आत्मा की परिणतियों से पूछो उन परिणतियों का जवाब अपने अरे परिणति की ओर से तो जवाब आएगा ही नहीं कि मैं सम्यक दर्शन हूं, ये जवाब नहीं आएगा, मैं श्रद्धा गुण हूं, अरे अपनी परिणति की ओर से जवाब नहीं आएगा, गुणों की ओर से जवाब नहीं आएगा, लेकिन जिस द्रव्य स्वभाव के साथ वो परिणतियां एकत्र हुई, हर परिणति की धड़कन में मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये स्वर जहां गुंजायमान होता है तब कहते हैं आत्मस्वरूप जहां था यह। नहीं तो अपने अपने झंडे सामने अलग अलग गाड़ रखें, फिर कहा कि आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप को तो तिलांजलि दे दी, क्योंकि तुम तो गुणों पर खड़े हो, तुम तो पर्याय पर खड़े हो, तो आत्मस्वरूप कहां हुआ? जब हर पर्याय अपने गुण का भी भेद तोड़कर अभेद चैतन्य की ओर ढले, उसका नाम है आत्मस्वरूप थाय। ठीक है, अब आगे देखो। अब जब आत्मस्वरूप थाय तो फिर क्या होता, बाद में क्या हो गया? पूर्ण परम पद प्राप्ति, अगला 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 स्टेप, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चरित्र हो गया, अंतर परिणति में लीनता हो गई, आत्मस्वरूप था ऐसी स्थिति हो गई, अब क्या? तो उन्होंने कहा पूर्ण परम पद प्राप्ति, कि पूर्ण परम पद की प्राप्ति अर्थात अर्यंत दशा, अर्थात सिद्ध दशा, मोह से मुक्ति अर्यंत दशा आ गई, और देह से मुक्ति सिद्ध दशा आ गई। समझ आ गया? निश्चयति त्या अनन्य सुखदाय, अनन्य सुखदाय, अब वो बात पूरी हो गई, अब तो सुखी सुख भोगना है, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, है ना, साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये साधि अनंत अनंत, साधि अनंत ये कालवाची और अनंत ये भाववाची, दो बार अनंत आए और दोनों अनंत के अर्थ अलग है। सादी अनंत ये कालवाची, कितने काल तक और कितना सुख, तो उन्होंने कहा अनंत सुख, अनंत सुख ये भाववाची और सादी अनंत ये कालवाची। कैसा है कि जब अनन्य हुआ तो जहां तो क्या हुआ कि पूर्ण परमात्म पूर्ण परम पद प्राप्ति निश्चयति जहां अनन्य सुख दाय, फिर क्या होगा भाई? ये तो होगी पूरी परमात्मा पद की विधि बता दी, है ना, परमात्मा पद की विधि बता दी, सम्यक दर्शन से लेकर परमात्मा पने की विधि, कितने लाइनों में? पांच छह लाइनों में। ठीक है, अब क्या हुआ? जीव अजीव पदार्थों, जीव अजीव पदार्थों, आगे पुण्य पाप आश्रव तथा बंध है क्या, कि जीव अजीव पदार्थ, मूल पदार्थ है जीव और अजीव, और उनके संयोग और वियोग रूप दो प्रकार की पर्याय होती है, उन जीव और अजीव के संयोग रूप में पुण्य पाप आश्रव और बंध, और जीव अजीव के वियोग संवर निर्जरा और मोक्ष। पंडित टोडरमल जी ने इनको दो भागों में बांटा, एक बनाई जीव की पार्टी, एक बनाई अजीव की पार्टी, जीव माने स्व और अजीव माने पर, तो स्व और पर की पार्टी उन्होंने बनाई, और उन्होंने कहा स्व माने जीव तत्व के स्व की पार्टी में कौन आए, तो उन्होंने कहा संवर निर्जरा और मोक्ष। दूसरा कहा अजीव, इस अजीव की पार्टी में कौन आए, आश्रव बंध, और इनके और भेद करो तो पुण्य और पाप, तो आश्रव की पार्टी में अजीव की पार्टी में ज्यादा है, आश्रव बंध पुण्य पाप अपने तो कम है, कि कम ज्यादा का सवाल नहीं है, वो ज्यादा हैं लेकिन दुखदायक हैं, आश्रव है बंध है पुण्य है पाप है, और है कहां ज्यादा, आश्रव बंध का पुण्य पाप में अंतर्भाव हो जाता है, चलो, लेकिन जो भी है वे आत्मा को पीड़ादायक है, आत्मा का खून चूसने वाले परिणाम है, आत्मा का खून चूसना माना आत्मा की शांति के लुटेरे परिणाम है, आत्मा की शांति को जलाने वाले परिणाम है। बोलते हैं अपन पूजा में, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल। क्या? शुभ और अशुभ की ज्वाला, बोलो, लगता है ज्वाला? शुभ की बात कर रहे हो, हम तो अशुभ ज्वाला नहीं लगता, शुभ तो कहां लगेगा, अशुभ ज्वाला नहीं लगता। और वास्तविकता क्या है? शुभ और अशुभ ये ज्वाला है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। ज्वाला किसको लगेगा? जिसने अंतर भगवान आत्मा की अतिंद्रिय शांति का रस चखा, उसे ज्वाला लगता है। ऐसी रूम में आप बैठे हो, बहुत ठंडा ठंडा रूम है एकदम, ठीक है, और एकदम आपको किसी कार्यवश ज्येष्ठ महीने की दोपहर में सड़क के बाहर आना पड़े, तब लगता है गर्मी क्या होती है। और जो मजदूर दिन भर गर्मी में ही काम कर रहे हैं, उनके लिए तो 12 महीने बसंत है, क्या दिक्कत है उनको, ठीक है। तो अतिंद्रिय आनंद की शांति जिन ज्ञानियों ने चखी, उन ज्ञानियों को पुण्य और पाप, राग और द्वेष, वो कहते हैं भट्टी में जलने जैसा दुख लगता है। सोगानी जी का वचन है, अज्ञानी को नहीं लगता, आनंद आता है, मजा आता है, ठीक है। तो यहां पे कहा जीव अजीव पदार्थो पुण्य पाप आश्रव तथा बंध संबर निर्जरा मोक्ष तत्व कया नव पदार्थ संबंध, ठीक है, कि ये नौ पदार्थ संबंध, ये जो मोक्ष तत्व कहे, नौ पदार्थ संबंध माने इनमें जो मूल तत्व हैं दो, जीव और अजीव, और इन जीव और अजीव के संबंध में, अब संबंध दो प्रकार का, एक संयोग रूप और एक वियोग रूप। संयोग में आश्रय बंध पुण्य पाप, वियोग में समर निजरा मोक्ष, तो इसके संबंध में ये नौ तत्व खड़े होते हैं। 13 नंबर की गाथा विशेष रूप से समय सार की पठनीय है, आश्रव होने योग्य आश्रव करने वाला, संवर होने योग्य संवारक करने वाला, ये सब लिया है उसमें। एक के अपने आप से 9 तत्व खड़े नहीं होते, 7 तत्व खड़े नहीं होते, ये लिया है ना, ठीक हो। अब देखो फिर अगला क्या लिया, जीव अजीव विषय ते 9 तत्व नो समावेश था ये। क्या लिया? कि जीव और अजीव इन 2 तत्वों में इन 9 तत्वों का समावेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अजीव का परिवार, अभी बताया टोडरमल जी साहब के आधार से, अजीव का परिवार आश्रय बंध पुण्य पाप, तो उस परिवार को पिताजी में शामिल कर दो। मैंने एक पिता के 4 बेटे, अब अपने को सामूहिक निमंत्रण देना है तो क्या करेंगे? पिताजी का नाम लिख दिया तो 4 आ गए, और पिताजी का नाम छोड़ के किसी एक का नाम लिखा तो घर में झगड़ा। और जीव का परिवार क्या? कि जीव संवर निर्जरा और मोक्ष, ये जीव का परिवार। तो यहां पे क्या बढ़िया लिखा, क्या लिखा देखो, जीव अजीव विषय ते 9 तत्वों नो समावेश था ये, ठीक है। और फिर क्या लिखा, वस्तु विचार विषय से भिन्न प्रबोध्या महान मुनि राय। कि देखो वास्तव में तो जीव और अजीव में इन 9 तत्वों का समावेश हो जाता है, लेकिन वस्तु विचार विशेष, वस्तु का विशेष रूप से विस्तार के साथ विचार करने के लिए भिन्न प्रबोध्या माने इन अलग अलग 9 तत्वों का प्रबोध्या माने उपदेश किया है, वर्णन किया है। किन्होंने वर्णन किया? महान मुनि राय। कितनी गजब की बात है, जीव अजीव का। अभी जैसे पूछा उसमें, कहता भाई आश्रय बंध में जब दोनों का समावेश हो जाए, आश्रय बंध में पुण्य पाप का समावेश हो जाता है, तो तुम पुण्य पाप को अलग क्यों गिनाते हो? तो उसका उत्तर दिया पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में, पुण्य छोड़कर पाप में स्वच्छंद प्रवर्तन ना करे, इसलिए तो पाप तत्व का निरूपण किया है। और पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने, इसलिए पुण्य तत्व का वर्णन किया है, यद्यपि आश्रव बंध में इनका समावेश हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, अजीव का आश्रय आश्रव बंध पुण्य पाप को उत्पन्न करेगा, और पुण्य पाप आश्रव बंध को उत्पन्न कर उत्पन्न होंगे तो तुझे दुख होगा। इसका मतलब ये कि अजीव का आश्रय दुखदायी है, ये बताने के लिए अजीव का निरूपण किया। जीव का आश्रय करेगा समवर निद्रा मोक्ष की प्राप्ति होगी। समवर निद्रा आंशिक सुख रूप है, मोक्ष पूर्ण सुख रूप है। यदि तुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति करना हो तो समवर निद्रा कर, समवर निद्रा करना हो तो जीव तत्व का आश्रय ले। जीव तत्व का आश्रय परम सुखदायी है, ये बताने के लिए उसका विस्तार से वर्णन किया है। इस एक पद में नव तत्वों का जो संक्षिप्त में गंभीर रहस्य है, उस गंभीर रहस्य को एक पद के अंदर श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपने को प्रबोधया मैंने उपदेश किया है। इसको समझकर हम अपने जीवन में अजीव का अवलंबन तोड़कर अपने शुद्ध जीव स्वभाव का अवलंबन करते हुए संवर निर्जरा प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति करके सादी अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं, ये ज्ञानी धर्मात्माओं का इसके पीछे अभिप्राय है। देखो एक पद में इतना भर दिया है, आप सोचो जरा। और एक एक लाइन जब लिखी जाती है ना, तो जितना लिखा जाता है उससे कई गुना विचार में आता है, उससे कई गुना उनके ख्याल में होता है, तब जाकर के थोड़ा सा लिखा जाता है। तो थोड़ा लिखा बहुत समझना, उन्होंने क्या करा कि बहुत समझा लेकिन लिखा थोड़ा। क्यों लिखा जा ही नहीं सकता ज्यादा। हमको क्या करना कि थोड़ा लिखा और अपने को बहुत समझना, ये इसके अंदर भाव भरे हैं। इस तरह इस अष्टानिका के दौरान अपन लोगों ने कृपालु देव के तीन पदों पर चर्चा की, ठीक है। बहुत मार्मिक पद हैं, कई पत्रांक भी वास्तव में अनुशीलन के योग्य हैं, बारंबार उसका विचार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो करना चाहिए, क्योंकि कल उनका जन्मदिन भी है, जन्म दिवस भी है, जन्म जयंती भी है। तो ऐसे महापुरुष की जिनका उपकार गुरुदेव श्री भी बड़े अहोभाव के साथ में व्यक्त करते थे, है ना। आज समय सारादि परमागमों की जो प्रभावना हो रही है उसके पीछे का कारण कौन है, श्रीमद् राजचंद्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परम अपने संस्थान से इन ग्रंथों का प्रकाशन कराया, जैसा शुरू के दिन बताया था, और वही परमागम गुरुदेव श्री को मिला, ठीक है। तो आज अपन लोग यहाँ पर बैठकर गुरुदेव श्री के प्रताप से समय सार परमागम जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लायक हुए हैं, आत्मा शब्द बोलने के लायक हुए हैं, आत्मा शब्द सीखने के लायक हुए हैं। ये सभी प्रताप अपने लिए गुरुदेव श्री का है, इसलिए उनके उपकार को हम अगर स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने जो मार्ग शुद्धात्मा की अनुभूति का बताया उस मार्ग पर हम गमन करें और सादी अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं। इसी भावना से अभी की बात यहाँ विराम लेते हैं।